देखिए, इसका पहले तो हम ये देखते हैं कि सऊदी इन्वेस्टमेंट ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसके दो लेवल हैं। पहला लेवल तो ये था कि सऊदी गवर्नमेंट का एक गोल था कि इस वक्त जो सऊदी फंड की वैल्यू है वो तकरीबन समझे आप बिटवीन 600 to 700 बिलियन डॉलर्स के करीब है, जिसे हम कहते हैं सॉवरन वेल्थ फंड। हर कंट्री अपने पास ये सॉवरन वेल्थ फंड रखता है। जितना आपका सॉवरन वेल्थ फंड ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। जैसे चाइना का क्लोज टू 1.6 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। तो सऊदी गवर्नमेंट का जो गोल था इस इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू वो ये था कि इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ये अपना सॉवरन फंड जो है उसको इंक्रीज कर लेंगे 600 बिलियन से लेके और ये ले जाएंगे 2 ट्रिलियन तक। दैट वाज अ गोल, पहला इनका गोल ये था। दूसरा इनका गोल ये था कि ये वहां पर एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन या इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी एक ऐसा कायम करना चाह रहे हैं जहां पर के दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके इवन जो सर्विस सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो। और ये यही वजह थी कि उसमें मेन स्पीकर थे अपना सीईओ जो थे जेपी मॉर्गन चेस के, तो उन्होंने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो अब आप ये देख लें कि जो आपका मेन स्पीकर हो जिसने कि आपको एडवाइस देनी हो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और ये इनवर्ड इन्वेस्टमेंट्स थी एक्चुअली, आउटवर्ड नहीं थी। तो जब एक आपका मेन स्पीकर ही विड्रॉ कर जाए और फिर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आपको एक ऐसी चीज का सामना हो जहां पर के फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज, गूगल, इसमें फिर ये देखें रिचर्ड ब्रांसन वर्जन एयरलाइंस का, तो बेशुमार ऐसे लोग हैं नोटेबल्स जो कि वहां से निकल गए। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा और मुझे नहीं लगता कि ये जो इशू है इतनी आसानी से इसको टर्किश और सऊदीज दोनों अथॉरिटी इसके ऊपर पर्दा डाल सकेंगी। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा ग्रूसम एक्ट है इन द मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी एम्बेसी में या किसी कॉन्सुलेट में कोई आदमी सर्विस के लिए गया हो और उसको मर्डर कर दिया गया हो।
हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अयूब मेहर साहब ने, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक काउंसिल के। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान क्या टारगेट कर रहा है अचीव करने के लिए, जबकि सारी दुनिया के मालिक जो है बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं वहां पर, पाकिस्तान क्या गेन कर सकता है?
देखिये, मैं इसको दो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सीवियर किस्म का एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमें शायद आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रांस मिनिस्टर साहब ने उनके वो कह रहे हैं कि ये नागुजीर है कि हम आईएमएफ के पास जाएं, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि शायद ना जाना पड़े। मेरा अंदाजा ये है कि माजी में भी एक मरतबा इस तरह हो चुका है कि सऊदी अरब ने हमें एक डेफर पेमेंट की सहूलत दी थी, जो जिससे हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमारी काफी हद तक सॉल्व हो गई थी। इस वक्त करंटली पोजीशन पाकिस्तान की यह है कि हमारी जो इम्पोर्ट है जो लगभग 60 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है, उसमें कोई 1/3 जो पोर्शन होता है वो सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट से रिलेटेड होता है। तो अगर हमें उस पर डेफर्ड पेमेंट की सहूलत मिल जाती है, ये मतलब लगभग 20 बिलियन डॉलर तो ये बन जाता है, तो इसमें अगर वो डेफर्ड पेमेंट कर देते हैं तो हमारा जो एक लिक्विडिटी क्राइसिस है जो इमीडिएटली पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, शायद उसमें हमें कुछ सऊदी अरब से हेल्प मिल सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, वो डेवलपमेंट फंड के लिए नहीं, वो तो सिर्फ डेफर पेमेंट होगी, लेकिन यह है कि एक वर्किंग कैपिटल मैनेज हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हमें इशू जो है टेम्परेरी तौर पे हमें वो किसी न किसी तरह से हम हल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये इसका एक एस्पेक्ट है जो पाकिस्तान के हिसाब से सोचा जा सकता है।